आज उस नारी को देख करके प्रसन्न हो जाता है और सोचने लगा कौन सा हमारे कुटुंब खानदान को। वह सेठ आगे बढ़कर के बंधुओं सोते हुए बसंत को और नदी में पटक देता है और एकदम से चादरा खींचा है। ए बेटी हो जाओ, पिताजी आप यहाँ कैसे, मेरे पिया कहाँ है?
अरे पगली,
तेरे पिया
हमें का पता कहाँ
है? ऐसे कर तो छोड़ के चलो वो। नहीं ऐसा हो नहीं हो सकता है पिताजी, तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? अरे पगली
देख,
अब तो हमारा तेरा रिश्ता
कुछ हो रही है,
आंखें खोल होश में आ जा।
नहीं 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 पिताजी,
आप समझो
ससुर भी आपने कि आप होते ही
आप कैसे पिता है? मुझे मालूम होता है आपने मेरे पिया को नदी में डाल दिया।
बोले
क्यों आंसू बह रही है, छोड़ दे उसकी प्रीत को, वो मेरा कोई खास लड़का नहीं था। और अब तो तू मेरी रानी कहलाएगी। बोले नहीं,
अब तो बच सकते नहीं
पिताजी,
कुछ देर के मेहमान हैं, अब पुकारे आपको ये दीन बंद भगवान हैं, मैं अब आपने मरने नदी
हे प्रभु,
मैं आपने मरने नदी छोड़ा मेरा अब हाथ है, जीवन कटेगा कैसे मेरा, अब बतलाओ किसके साथ है।
अरे पगली ये आंसू बहाना छोड़, एक बार तू हमसे पिया कह देना, तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। बोले नहीं पिताजी, मर जाऊंगी लेकिन मैं अपने सतीश को नहीं जाने दूंगी।
देख
बेटा नहीं नौकर था वो, इधर देख,
बेटा नहीं नौकर था वो,
मरने से पीछा छुट गया, अब तेरा मेरा पति पत्नी का पक्का रिश्ता
जुड़ गया।
नहीं पिताजी, मर जाऊंगी लेकिन मैं आपसे पिया नहीं कहूंगी। सेठ जी क्यों मारी गई तुम्हारी मती, सेठ जी क्यों मारी गई तुम्हारी मती,
रूप बसंत का किस्सा सुना देगा, वही है मेरा पति।
आप रूप बसंत का किस्सा जानते हो?
बोले
रूप बसंत ने किस्सा ही कह रही है।
इधर देख,
तोता मैना को सुन ले, हीर राने का सुन ले, अरे सीरी फरियाद का सुन ले, तोता मैना और तोता मैना को तुम ना सुन रही और हीर राने का भी नहीं सुन रही है,
तो सीरी फरियाद का सुन ले।
बोले नहीं
पिताजी, मुझे रूप बसंत का किस्सा चाहिए।
आज मेरे प्रिय श्रोता हो क्या कहने लगी हो?
और 6 महीने से प्रथम करो तंग तो प्रारोगमाओ,
हाथ मन लगा देना,
महाराज लगे के साथ मजा करा और हुक्म बजाओ सुर में ना हो सुनो मेरी दरबार,
तुम्हारा करार है और 6 महीने के अंदर तुम मुझे किस्सा सुनवा दी। अन्यथा 7वां महीना लगा तो समझ लो फिर भी तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं अपने प्राण गंवा दूं।
सेठ बोला मरे मत,
चल तू रूप बसंत कोई किस्सा सुनेगी तो 6 महीना तो भी बहुत दूर है। आज बंधु देखिए, जो बसंत को नदी में डाला था वह बसंत वहां से बहता हुआ और मिश्रा देश के नगर के आकर के समीप जब लग किनारे से लाश मिल जाती है, होश आया तो आज देखा है तो सामने नगर है और पहुंच जाता है कहां तो भी धोबिन किया। अचानक पहुंचा दिनों के बाद तो एकदम से धोबी बोला बेटा बेटा तू आ गया। हाँ दादा मैं आ गया, इतने दिन कहाँ रहे। दादा वो सेठ मुई कपड़ा धोबे तोरी ले गो तो तुम्हें बलि चढ़ान ले गया था और दादा खुशी मना ले यो ब्याह है गो। लाला बहू कहा है के बहू तो वह सेठ ने छुड़ा ले तो हर तेरे की तो तब ब्याह तो काय को भो। हाँ हम तो जाने के हमारे का बहू लेके आया तो बड़ी खुशी की बात थी। अम्मा जो अटका है अब चलो घरों ना जा तो रोटी अपना होती वहां पर। दादा को बात ना मैं करके खबांगो में आ गया तो मेरे प्रिंस होता हूँ आज झाज आकर के मिश्रा देश के नगर से वही घाट पे आयो और झाज अपने आप बंद हो जाते। तो मेरे प्रिंस होता हूँ सेठ ने मन में सोचा कि शायद हो सकता है यहाँ किस्सा मिल जाए इस नगर राजा से फरियाद करूं क्योंकि यह हाई तो भेजा। हाँ हाँ बंधु अरे बात सुनी रे दावा सौदागर की, अरे पंच सुनियो तो हाल लगाई बड़ा दारा चलो फेर दिया दरवाजा नीले पहुंच जाए
जोड़े कर दिन करी तब राजा सुन लो कान। सुना दिए सुनाई, और जो कोई किस्सा हमें सुनावे ताकू आदि राज गहाए।
इस प्रकार से आज रूप कुमार ने कहा कि भैया जनाने प्रधान, सारे शहर में ढोरी पिटवा दो, जो कोई रूप बसंत का किस्सा सुनाएगा हम उसको आदि राज नाम में देंगे। आज बंधुओं जब ढोरी पिटवाई है जनानिया प्रधान ने, तो घर में नगर निवासी सुनते हैं, और उसी समय दरमियान मिश्रा देश में उनके चाचा धीर सिंह जो महात्मा का भेष था, उस ढोरी की आवाज वो भी सुनते हैं, तो जो कोई रूप बसंत का किस्सा सुनाएगा वो हमारे राजा की तरफ से आदि राज नाम में आएगा। तो आज बंधु धीर सिंह सोचने लगे, धन्य है प्रभु, बेटों से मिलन तो नहीं हुआ, शायद आज किस्सा से ही धीर बन जाएगा, इस किस्सा को तो हम भी सुनना चाहते हैं। आज रात जाकर के राजा की कचहरी में यानी दरबार में जाके बैठ जाते हैं धीर सिंह। बंधु इधर में रूप बसंत को किस्सा कोई जानो तो, अब जाके जो बंदो जो उन्होंने सुना है बसंत ने, जो धोबी धोबिन किया रह रहा था, तो बसंत कहने लगा, दादा बोले बनेगा काम काय, क्या बात है बेटा कैसा काम बनेगा, कि देखो जो जनानिया प्रधान जो ढोड़ी पीट रहा है ना, क्या जो कोई रूप बसंत का किस्सा सुनाएगा वो आदि राज नाम में पाएगा। दादा अब तुम ऐसा करो, तुम राजा है क्यों बेटा, हमें अचानक ही राजा कैसे गए, तो तुम है गए, अम्मा हमारी रानी है गई बेटा कैसे, कि दादा फिर रूप बसंत को किस्सा मैं जानता हूं, और छाती ठोक के राजा से कह दो कि महाराज हमारे बेटे की बहू रूप बसंत का किस्सा सुनाएगी, और अपने झोपड़ी से हमारे महलन तक कनात को इंतजाम करवाएगी। वो भी बोला तो दिमाग खराब है था, राजा के महल में झोपड़ी बता रहे, ये दादा एक बात बता, जिनमें हमें रहनो ही ना है तो हमारे क्या, तो झोपड़ी के वहां फिर हम झोपड़ी में रहे तो हमारे तो महल है जी। बेटा बात तो तू सही कर, बहुत होशियार है, बहुत लोग साल भर बाहर रहो प्रेमचंद के संग चलो गो भैया। इसी प्रकार से धोबी ने जाकर के कहा, महाराज किस्सा हमारे बेटे की बहू सुनाएगी, और अपने महलन से झोपड़ी तक इंतजाम करा दो कनात का, पर्दे का। बोले ठीक ऐसा ही होगा। बंधु देखिए राजा का ऑर्डर, आज बंधु जब राजा ने ऑर्डर दिया है तो कनात का इंतजाम करवाया गया। अब धोबी आके बोलो, अरे बेटा तेरी बहू तो जाजमे, बहू को बनेगा, ये दादा तू काय बात चिंता कर, बहू मैं बनूंगा, कभी तो मेरे पर्दा का इंतजाम करवाओ, ये लाला तू बहू बन जाता है, दादा बन जाते जो भक्त करते है तो ठीक। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, कैसा ये रूप बसंत का, कनात में से और बसंत ही इस किस्सा को बैठ करके और कहता है। इधर में उनके चाचा भी वही बैठे थे, सारी प्रजा थी, और किस प्रकार से किस्सा कहता है, और ये भी कहा था राजा ने कि जो कोई किस्सा के बीच में ब्यादा करेगा उसे सूली का हुक्म होगा। किस्सा शुरू होता है बंधु, और कैसे किस्सा को कह रहा है, अरे भाड़ा नगरी गाम हमारो तुम कूद बतला, था पाल प्रकाश के श्याना बनाया। इधर धीर सिंह की सलाह से कैसे बता रहे हो बेटा, धीरे धीरे आज ये प्रजा सुनती है।
तो जहां तक कहानी पहुंचती है तो आंखों से आंसू बहाने लगी है प्रजा। अब देखिए इधर क्या होता है। अरे खेल जो खेला ना मेरे भैया, महल ने ढिया तो बचाई रे। अरे कोलो गलो जब गया ना भैया, मौसी महल ने बचाई रे। झूठा इंजाम लगा रानी ने, मैं फांसी दही लगाई रे। आज मैं अपनी सोचता हूं, देखिए इस प्रकार से रानी ने झूठा इंजाम लगा करके सूली का हुक्म दिलवा दिया है। बसंत कुमार ने साथ दियो तो बाबू को सजा सुनाई रे। चाचा धीर सिंह महाराज कचहरी फौरन पहुंच आई रे। कहानी बिल्कुल सत्य। आह भैया, उस शेर को मारने के लिए हुक्म दिया था जो शहर के रोज राजाओं को खा जाता था, यानी रोज बच्चों को खा जाता था। तो राजा रूप कुमार हो गए हैं जनान्य प्रधान लोन में आकर के बसंत को मार देता है और नदी में डाल देता है। बंगो बसंत कुमार को धोबी ले जाता है, धोबी के यहाँ बसंत रहने लगता है। एक दिन क्या होता है कि सेठ आता है और बसंत कुमार को कपड़ों के बहाने वहां से ले जाता है। सेठ के यहाँ उसकी शादी होती है। आहा, तो उस सेठ की नीयत खराब हो जाती है रानी को देख करके। तो बसंत को नदी में डाल दिया गया और लेकिन उसकी घरवाली ने जो वचन लिया था कि जो कोई रूप बसंत का कुछ सुना देगा वही मेरा पति होगा। इस खातिर आज ये किस्सा हो रहा है। तो जब सेठ को ना आओ, सेठ बोले जो किस्सा बंद कर दिया जाए। राजा बोले फांसी हो जाएगी, बैठ जाओ। जनानी प्रधान को ना आओ तो उन्हें कहे कि जो किस्सा बंद कर दी है। बोले कुछ नहीं, बैठ जाए तुमको फांसी होगी। अब आहा भैया, अब देखो इधर में आगे किस्सा बढ़ता है। ध्यान देकर के सुनते रूप बसंत को किस्सा सुना दे वही पति कहलाई रे। आह भैया, इधर में चाचा धीर सिंह बैठी जो आज उनकी हिलकी बन रही है। हाँ सुनी तो हरा तो हाई रे। दरबार में खुल के आए, मैं देखना चाहता हूँ।
पर्दा हटा दो जब मेरे भैया, बसंत पढ़ो लखाई रे, गद्दी पर तो ठाड़ो है गो, अब रूप गयो भैराई रे, और जेट भर लाई जब भैया की, इत चाचा पढ़े लखाई रे, अरे भज के दोनों भैया चाहे चाचा ढंग से आई रे। आज बंदे इस प्रकार से तीनों प्राणी भरी कचहरी में मिलते हुए चंद प्रभा बसंत की घरवाली आकर के कहती है, पिया आप
हाँ
अब सेठ जी के भैया वह भोए चले गए। इस प्रकार से बंधु जनानिया प्रधान को और इधर में सेठ को हाँ फांसी लटकाया गया।
इधर यहाँ का राजा मिश्रा देश के तो रूप कुमार बनी चुके थे, लेकिन चाचा आज लौट करके धारा नगरी में पहुंचते हैं। जब तक क्या होता है कि रानी आंखों से अंधी हो जाती है और राजा बहुत वृद्ध हो जाते हैं। जाकर के बंधु अब जब अपने माता पिता से मिले हैं तो यहाँ मौसी बड़ी लज्जामान होती है, बेटा मुझे माफ कर दो, उस समय जवानी का जोश था और मैं भूल गई थी और उसका पश्चाताप आज मुझे भोगना पड़ रहा है। तो बंधु आज धारा नगरी का राजा बसंत कुमार को बना दिया गया है और राजतिलक करके राजा रानी दोनों जंगल के लिए चले जाते तपस्या करने के लिए। ये किस्सा हमारा राठौर कैसेट के माध्यम से आपने सुना, मुझे इसको यही समाप्त करता हूँ। एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।